जो भी हैं इनको म्यूट कर दें प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिल लजी अस्तफा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बल कुलूबुहुम फी गमरतिन मिन हाज़ा वलहुम आमालुन मिन ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُطْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ إِلَى الْآخِرَةِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا علما. تو اس رمضان المبارک میں ہم نے یکم رمضان جو کہ مڈل ایسٹ کے حساب سے یکم تھا نہیں بلکہ ہم نے تو یکم کو شروع ہی نہیں کیا تھا کیونکہ ہم سفر پہ تھے, تو اس کے بعد سے شروع کیا تھا غالباً دوسرے رمضان سے جو کہ پاکستان انڈیا میں بھی پہلی رمضان تھی. تو سورہ مؤمنون کی تفسیر پڑھنا ہم نے مارک قرآن کی جلد نمبر 6 سے شروع کیا تھا, اور ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ خوب تفصیل کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, تو اس وجہ سے نا یہ ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہوتا کہ یہ ہم ختم کریں گے اتنے عرصے کے اندر, اور یہ ہمارے یہاں سٹائل ہی نہیں ہے کسی بھی درس قرآن میں. تو یہی ہوا جس کا کہ اندیشہ تھا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ ختم پر ہے اور سورہ مؤمنون ابھی بھی کافی ساری باقی. تو جیسا کہ پہلے ہی دل میں تھا کہ اس کو پھر ہم نا جاری رکھیں گے, جو کہ یعنی رمضان المبارک کے باہر ہمارے درس قرآن کے سیشنز ہوتے ہیں, کلاسز ہوتی ہیں, وہ بھی آن لائن ہی ہوتی ہیں, لیکن وہ روزانہ نہیں ہوتی بلکہ ہفتے میں صرف دو دن کے حساب سے ہوتی ہیں, پیر اور بدھ کو ہوتی ہیں. تو ان میں صبح کے وقت خواتین کی درس قرآن کی کلاس ہوتی ہے پیر اور بدھ کو, اور رات کے وقت مردوں کی درس قرآن کی کلاس ہوتی ہے وہ بھی پیر اور بدھ کو ہی ہوتی ہے. تو اس رات والی کلاس کے اندر ہم سورہ مؤمنون کو جاری رکھیں گے. تو جو مرد حضرات ہیں وہ دفتروں سے فارغ وارغ ہو کر کے پھر اس کے بعد اس کلاس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں, اور جو خواتین ہیں جو کہ کوشش تھوڑی سی کر لیں اپنے ٹائمنگ وغیرہ کو ایڈجسٹ کرنے کی, تو وہ بھی اس کلاس کے اندر لائیو شامل ہو سکتی ہیں, اور جو لائیو شامل نہ ہو سکے تو اس کے لیے ریکارڈنگ کا نظام ہوتا ہے, وہ گروپ کے اوپر بھیج دی جاتی ہے. تو جو سورہ مومنون کو پھر مکمل کرنا چاہے تو وہ ہمارے جو ایئر لانگ یعنی سارا سال چلنے والے درس قرآن ہیں ان کے گروپس کے اندر اپنے آپ کو ایڈ کروا لیں اگر وہ آلریڈی ایڈڈ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, باقی صبح کے وقت جو ہے وہ ہماری سورہ انبیاء کی تفسیر خواتین میں چلی رہی ہے, اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. مردوں میں سورہ مومنون کیوں ہم جاری رکھیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے مردوں میں سورہ طٰہٰ کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور پھر ہم نے کوئی نئی سورت شروع ہی نہیں کری تھی. ٹھیک ہے, تو سورہ مومنون ہی اس کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کنٹینیو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہو اس سلسلے میں تو وہ پوچھ لیں, ہم میسیجز بھیجتے رہتے ہیں تفسیر گروپس کے اوپر کہ جو ہمارا سالانہ یعنی سال بھر کا جو پروگرام ہے اس میں اپنے آپ کو ایڈ کس طرح سے کروایا جا سکتا ہے. سورہ مؤمنون کی ان آیات یعنی 63 سے 77 کے ترجمے سے ہم فارغ ہو چکے ہیں, اور کل ہم نے خلاصہ تفسیر بھی پڑھ کے مکمل کر لی تھی. ان میں جو موضوعات ڈسکس ہوئے تھے, تو کسی کو کوئی سوال ہو تو یہاں پہ لکھ کر کے چیٹ بنڈوں پر پوچھ لیں. اب ہم شروع کر رہے ہیں ان کے معارف و مسائل پڑھنا. پیج نمبر 321 بنتا ہے ایسا جس کے پاس جو قرآن کی جلد ہے اس کے حساب سے 321 صفحہ پر. تو حضرت نے سب سے پہلے معارف و مسائل میں لفظ غمراہ کی تحقیق لکھی ہے, کیونکہ پہلی آیت میں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا, کہ بلکہ ان کے جو قلوب ہیں یعنی اب کافروں کی بات ہو رہی تھی کہ ان کے جو قلوب ہیں نا وہ تو اس سے جو ہے نا وہ غفلت میں ہیں, بے ہوش ہیں. تو غمرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, حضرت لکھتے ہیں کہ غمرہ ایسے گہرے پانی کو کہتے ہیں جس میں آدمی ڈوب جائے اور جو اس میں داخل ہونے والے کو اپنے اندر چھپا لے. ٹھیک ہے نا, یعنی اتنی ڈیپتھ ہو پانی کی کہ بندہ جو ہے نا وہ اس کے اندر چھپ جائے. اگر اتنی نہ ہو कि उसका यानी उसकी टांगे जमीन पे लगी हुई हों पानी की तह में और उसका सर जो है वो बाहर निकला हुआ, तो उसको गमरानी कहेंगे। ठीक है, तो कम से कम इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि बंदा जो है ना उसमें डूब सके, उसको गमरा कहते हैं। इसीलिए लफ्ज गमरा पर, गमरा जो है पर्दा और हर ढांप लेने वाली चीज के लिए भी बोला बोला जाता है। ठीक है, यहाँ उनकी मुशरिकाना जहालत को गमरा कहा गया है, यानी इंसान की जो जहालत होती है ना, जहालत से यहाँ पर मुराद जो है वो क्या है, सिर्फ ये मुराद नहीं, यहाँ पे जहालत से मुराद जो है वो ये है ही नहीं कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, राइट। वो जो है वो लिटरेट नहीं थे, वो स्कॉलास्टिक किस्म के लोग नहीं थे, स्कॉलरली किस्म के लोग नहीं थे। यहाँ पे जहालत का मतलब ये है ही नहीं, बल्कि जहालत का मतलब यहाँ पर जो है वो हट धर्मी है, बद इखलाकी है, झूठ है, धोखा है, ये सारी चीजें यहाँ पर जहालत लफ्ज से ताबीर की गई हैं। ठीक है ना, तो उनकी मुशरिकाना जहालत जो थी ना, बेशक कितने ही पढ़े लिखे थे, कितने ही उनको शेर आते थे, कितने ही उनको जो है वो अरबी दानी आती थी, फिर भी जाहिल थे। ठीक है ना, क्योंकि मुशरिक रहे, तो मुशरिकाना जहालत, ठीक है, उसको भी गमरा कहा गया है, जिसमें उनके दिल डूबे हुए और छुपे हुए हैं, कि किसी तरफ से उनको रोशनी की किरण नहीं पहुंचती। ठीक है, दिल का क्या मामला होता है इंसान का, यहां पर दिल से मुराद गमरत, हाँ गमरात, गमरात अल-मौत, जी, जैसे कि वो अल्लाहुम्मा इन्ना नऊजु बिका मिन सकरात अल-मौत, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊजु बिका मिन गमरात अल-मौत। ठीक है ना, ये हदीस मुबारक से ये दुआएं भी हमें पता चलती हैं कि सकरातुल मौत और गमरातुल मौत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। ठीक है, यानी गमरातुल मौत के मौत के वक्त ऐसी बेहोशी तारी हो जाए कि इंसान जो है ना वो वही जहालत वाले काम करना शुरू हो जाए मौत के वक्त, बजाय इसके कि कलमा पढ़े, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, वो जो है वो वही जैसे लोगों को जिंदगी के अंदर गालियां देने की आदत होती है ना, तो उस सकरातुल मौत की कैफियत में उनके मुंह से गालियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। किसी को सारी जिंदगी जो है वो उस दूसरे किस्म के अपने दुकान के ऊपर जो वो ले लो आलो आलू ले लो आलू ले लो, है तो ऐसे भी वाकयात किताबों में मिले हैं कि सारी जिंदगी जो है ना वो दुकान के ऊपर यही बोलता रहता था, और जरूरतन नहीं बोलता था बल्कि इसके दिल में यही, ये दुकान जो थी ना ये सिर्फ इसके हाथों में नहीं थी बल्कि दुकान इसके दिल में भी थी, मोहब्बत शदीदा थी उसको अपनी दुकान के साथ। तो अब जब मौत का वक्त आया है तो उस वक्त इसको पढ़ना चाहिए था यानी कलमा, और ये पढ़ रहा है आलू ले लो, ये ले लो, कपड़ा खरीद लो मुझसे आके, मुझसे ये कर लो, मुझसे वो कर लो। ठीक है ना, तो ये गमरातुल मौत के मौत के वक्त जो है ना ऐसी मदहोशी का शिकार हो जाए कि जो करना चाहिए था वो भूल जाए। ठीक है, इसी वजह से जिंदगी की, दुनिया की जिंदगी है ना, उसमें अपनी आदतें अच्छी बना करके रखनी चाहिए ताकि मौत के वक्त वो आदतें गालिब आ जाएं, अच्छी आदतें गालिब आ जाएं, बुरी आदतें गालिब ना आए। ठीक है ना, कमा तईशून तमूतून, फरमाया कि जैसे तुम जिंदगी गुजारते हो ना वैसे ही तुम मरोगे। ठीक है ना, अगर जिंदगी में तुम धोखेबाज और फरेबी किस्म के इंसान हो ना, तुम्हारी मौत भी जो है ना वो सिद्क और इखलास के ऊपर नहीं आएगी। ठीक है, तो दिल के ऊपर जो है ना पर्दा चढ़ जाता है, दिल का मामला, और यानी ये थोड़ा सा वो रूहानियत वाली बात पहले भी थोड़ी सी इस क्लास में हो चुकी है, नफ्स के बारे में बात करी थी, अकल के बारे में बात करी थी, कल्ब के बारे में बात करी थी, ये सब रूह की जो है ना वो सलाहियतें हैं, रूह के अंदर मौजूद फैकल्टीज हैं, अकल, कल्ब, नफ्स वगैरह। ठीक है, तो नफ्स के बारे में पहले बात हो चुकी थी कि नफ्स का तज़किया करना पड़ता है, क्योंकि नफ्स जो है ना वो गुनाहों की वजह से मैला हो जाता है, गुनाहों की वजह से ना मैल कुचैल नफ्स के अंदर जो है वो घुस जाती है, अब उसको साफ करने के लिए निचोड़ना पड़ता है, जैसे कि धोबी जो है ना वो निचोड़ता है और फिर अपने डंडे से जो है ना उसको मारता है कपड़े को। ठीक है ना, तो उसके अंदर से फिर मैल कुचैल निकलती है। वॉशिंग मशीन के अंदर जब आप अपने गंदे कपड़े को डालते हैं तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी उसको साइकिल्स है ना खूब घुमाया जा रहा है, ते धनाधन बड़ा तेजी के साथ घुमाया जा रहा है, और उसके अंदर जो है वो यानी अंदर क्या हो रहा होता होगा उस कपड़े के साथ, है ना, अंदर जाकर के देखेंगे तब पता चलेगा कि वॉशिंग मशीन में कपड़े के साथ क्या हो रहा होता है। ठीक है ना, तो कपड़ा जाने और उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो कपड़े को इसी तरीके से जो है ना वो बहुत यानी निचोड़ निचोड़ करके फिर उसके बाद उसको स्क्वीज किया जाता है वॉशिंग मशीन के अंदर, फिर उसके अंदर से जो है वो साबुन निकलता है, पानी निकलता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वो कपड़े को धोया जाता है। कपड़े को आप डस्टिंग नहीं कर सकते, कपड़े के ऊपर जो है वो फर्नीचर की तरह से डस्ट की लेयर नहीं आती कि आप उसको कपड़े से किसी दूसरे कपड़े से पोंछ दें, ठीक है ना। एयर ब्लोअर के जरिए से उसके ऊपर से आप जो है वो सक कर लें डस्ट को, कपड़े की ऐसी सफाई नहीं होती। यही मामला नफ्स का होता है। नफ्स के रग रग रेशे रेशे के अंदर गुनाहों की वजह से नजासत भर जाती है। अब जब तक इस नफ्स को निचोड़ा ना जाए, डंडे ना लगाए जाए, है ना, उस वक्त तक ये नफ्स जो है ना ये सुधरता नहीं है, ठीक है ना। एज अगेंस्ट कल्ब, कल्ब का मामला जो है वो मुख्तलिफ है। कल्ब के तजकिए की जरूरत नहीं होती, बल्कि कल्ब के तस्फिये की जरूरत होती है, सफाई। सफाई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि डस्टिंग, किसी के ऊपर लेयर चढ़ गई, मिट्टी की लेयर चढ़ गई, सैंड की। आजकल सैंड स्टॉर्म बहुत आ रहे हैं यहाँ पर, राइट, डस्ट स्टॉर्म्स आते रहते हैं। तो इनकी जो लेयर चढ़ जाती है ना, इनको अब चीजों को निचोड़ना नहीं पड़ता जिनके ऊपर ये डस्ट चढ़ जाती है, जो हार्ड सर्फेसिस होती हैं, यानी इस तरह की सर्फेस, तो उनको जो है ना फिर आप ऊपर से पोंछ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक पर्दा चढ़ गया कल्ब के ऊपर, तो उसको आपने तस्वीर के जरिए से पोंछ लिया, ठीक है। तो जब पर्दा चढ़ गया और आपने उसको पोछा भी नहीं, तो भाई ये पर्दा जो है ना ये अनवारात और तजल्लियात को, कुरान की हो या नमाज की हो या सदका खैरात की हो या दूसरी नेकी के काम करने की हो, या वैसे ही जो है वो काबतुल्ला के पास पहुंच गए जी, वहां से अनवारात आ रहे हैं, काबतुल्ला से आ रहे हैं, तो उनको जो है ना फिर कल्ब के अंदर दाखिल नहीं होने देता। डिपेंडिंग ऑन हाउ थिक ऑफ ए पर्दा दिस इज, अगर ये पर्दा जो है वो थोड़ा सा यानी पोरस किस्म का पर्दा है, राइट, एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू जो है वो कुछ कुछ ना कुछ चला जाता है, तो फिर तो थोड़े अनवारा दाखिल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये पर्दा बड़ा हार्ड किस्म का, मोटा किस्म का पर्दा हो गया, किसी ऐसी चीज का बना हुआ कि अब तो उसके थ्रू लाइट जाती नहीं है, तो फिर तो कुछ भी नहीं जाएगा ना। यही हाल काफिर के दिल का होता है कि उसके दिल के ऊपर ऐसा पर्दा होता है कि जिसके थ्रू कुछ भी नूर नहीं जा रहा होता। और मोमिन जो होता है, जिसके अकायद सही होते हैं, है ना, अल्लाह पर ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आखरत के ऊपर ईमान, कदर के ऊपर ईमान, तकदीर के ऊपर, है ना, सारी चीजों के ऊपर जिसका ईमान सही होता है, खत्म नबूवत के ऊपर ईमान बिल्कुल क्लियर साफ होता है, तो अब वो गुनाह जो कर रहा होता है ना, उन गुनाहों की वजह से उसके ऊपर एक पोरस किस्म का पर्दा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से अनवारात और तजल्लियात जो है वो छिन छिन छन छन करके अंदर दाखिल होते हैं। छिन छिन का नहीं, छन छन करके दाखिल होते हैं, ठीक है ना। तो कमी हो जाती है अनवारात के दाखिल होने में, सही है। तो इसी वजह से मोमिन को जो है वो तस्वीय कल्ब करना पड़ता है, अगर वो पूरे अनवारात हासिल करना चाहता है, नेकियों के, नेक मुकामात के, नेक आमाल के, नेक साआतों के। कल 27वीं की शब जो है वो बरे सगीर के अंदर गुजरी है, कितना कितना मुबारक मौका था, है ना। और कुछ लोग जो है वो इन मौकों के अंदर मुबारक जगहों के ऊपर भी मौजूद थे, कोई जो है वो इतिकाफ में मौजूद है, कोई जो है वो अपने शेख की खानकाह में मौजूद है, कोई हरमैन में मौजूद है, तो भाई वहां पे तो अनवारात और तजल्लियात की बारिशें हो रही थी ना। लेकिन अगर कल्ब के ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है तो फिर वो अंदर दाखिल नहीं हो रही, या हो रही हैं तो बहुत थोड़ी दाखिल हो रही हैं, ठीक है। तो गमरा के अंदर जब दिल डूब जाता है तो फिर रोशनी उसके अंदर दाखिल नहीं होती। वलहुम अमालुम मिन दूनि ज़ालिक, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ये लोग जो है ना वो अमाल में लगे हुए हैं, उन अमाल के अलावा जो के हकीकी ईमान वाले करते हैं, उनके अलावा ये दूसरे अमाल में लगे हुए हैं, हम लहा आमिलून, और करे चले जा रहे हैं, लगे लगे पड़े हुए अमाल के अंदर है, लगे हुए हैं वजीफे पढ़ने में और नफले पढ़ने के अंदर और दूसरे जिस किस्म के भी अमाल है सबके अंदर लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि यानी उनकी गुमराही के लिए तो एक शिर्क व कुफर ही का पर्दा गफलत काफी था, मगर वो इसी पर बस नहीं करते, उसके अलावा दूसरे आमाले खबीसा भी मुसलसल करते ही रहते हैं। दूसरे आमाले खबीसा यानी बिदतें, बिदतें करते रहते हैं, जैसे वो लोग जो हैं वो हज के अंदर बिदतें करते थे, काबतुल्ला की जो खिदमत करते थे तो उसके अंदर बिदतें भी करते थे, राइट, नई नई चीजें ईजाद की हुई जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अरबों को नहीं सिखाई थी, वो अपनी तरफ से जो है ना वो ऐड करके एक अब्दुल्ला के साथ करते रहते थे उल्टी सीधी हरकतें, ठीक है ना। फिर उसके अलावा जो गुनाह के काम के शर्तें लगा दी कि जी जो यहाँ पे तवाफ करने के लिए आएगा ना उसको जरूरी है कि कुरैश से खरीद के कपड़ा पहने फिर उसमें तवाफ करे, और अगर वो कुरैश से खरीदता नहीं है तो फिर उसको जो है वो बगैर कपड़ों के तवाफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। आमाले खबीसा, अब जो लोग नहीं खरीदना चाहते थे कुरैश से कपड़े तो वो बरहना तवाफ करते थे, तो कितना खबीस अमल ये साथ साथ करते थे, ठीक है ना। उसी तरीके से जो भी इंसान जो है वो नेकियों के साथ गुनाहों के अमाल भी करता रहता है तो वो सारे अमाल भी अमाले खबीसा ही कहलाएंगे, जो कि हम अल्लाह माफ करे हमें और हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए कि हम भी जो है वो नेकियों के साथ साथ अमाले खबीसा भी मुसलसल करते रहते हैं। झूठ बोलना जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। मुतरफीहिम, तो मुतरफीहिम की तहकीक में लिखते हैं मुतरफ तरफ से मुश्तक है, डिराइव्ड है, जिसके मानी तनाउम और खुशहाली के हैं। तनाउम का मतलब नेमतों का होना, ठीक है, नेमतों से माशाल्लाह लबरेज होना, और खुशहाली के हैं। इस जगह इस कौम को अजाब में पकड़ने का जिक्र है जिसमें अमीर गरीब खुशहाल बदहाल सभी दाखिल होंगे, ठीक है ना। यानी अजाब जैसे पहले बात हो चुकी सिर्फ अमीरों पर नहीं आएगा, गरीब पर भी आएगा, बदहाल पर भी आएगा, मगर मुतरफीन और खुशहालों का जिक्र खास तौर पर इसलिए किया कि ऐसे ही लोग दुनिया के मसाइब से अपने बचाव का कुछ सामान कर लिया करते हैं, है ना। माइग्रेट कर जाते हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो गया, या आजकल जो है वो दूसरे कौम वालों ने जो मसला खड़ा किया हुआ है, चलो जी हमारे पास पैसे हैं हम छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ से, माइग्रेट कर लेते हैं। जब बगदाद के ऊपर तातारियों ने हमला किया था ना, या हमला करने वाले थे, तो बगदाद के अंदर भी इसी तरह के तीन ग्रोह बन गए थे, बगदाद में भी तीन ग्रोह बन गए थे, यानी वो इराक का पूरा इलाका, ठीक है ना, जिसमें बगदाद जो है वो उसका दारुल हुकूमत था। एक ग्रोह वो था जो के बड़े जो है ना वो उनके पास वसाइल थे, वो जो है वो भाग खड़े हुए, ठीक है ना, वो माइग्रेट कर गए, और उनको जो है ना वो यानी बाकायदा हदीस मुबारक मौजूद है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये होगा और मुसलमानों के तीन ग्रोह बन जाएंगे, ठीक है ना। अब वो एक तो कुर्बे कयामत के वक्त का के बारे में भी है, और कुछ उलमा ने उसको जो है या जो वही वाली हदीस है या ये कोई अलग हदीस है, ये तातारियों के जमाने के ऊपर भी मुंतबिक किया है कि तीसरा एक ग्रोह जो है वो भाग खड़ा होगा और ये भी नाकाम होंगे, ये भी मर्दूद होंगे, ये लोग जो भाग खड़े होंगे, ठीक है, यानी माइग्रेट कर जाएंगे इन अदर वर्ड्स। और दूसरे लोग जो होंगे ना वो जो है वो उनके साथ काफिरों के साथ साजबाज करके उनके साथ जो है ना वो उनको जरा बटरिंग करके मक्खन लगा करके और उनसे जो है वो अमन तलब करने की कोशिश करेंगे, ये भी मारे जाएंगे, काफिर उनको नहीं बख्शने वाले, ये भी मारे जाएंगे। और तीसरा ग्रोह जो है ये काफिरों के साथ जिहाद करेगा और ये शहीद हो जाएगा, और ये लोग जो है ना ये होंगे कामयाब, ठीक है ना। अब ये तीन ग्रोह जो है ना ये वैसे भी आखिरी जमाने में तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि एक ग्रोह जो है वो तो गाजी होंगे और कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ततारियों के साथ वाला जो ग्रोह है ना जो कि लड़ा था उनसे वो शहीद हो गया था, है ना। आखिरी जमाने में ऐसा तो नहीं होने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है, वो अलग हदीसें हैं। तो यानी दीन इस्लाम के ऊपर बंदा डट जाए और अल्लाह की मदद की उम्मीद रखे, अल्लाह ताला की मदद की अमाल करे, ठीक है ना। ये कोई थोड़ी कीजिए या तो काफिरों के जो है वो उनके जो है वो पैर चूमने शुरू कर दें कि जी वो किसी तरीके से हमें माफ कर दें, वो उन्होंने कोई नहीं माफ करना है, अल्लाह ताला ने माफी दिलवानी नहीं है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। या ये कि भाग खड़े हो तो भागना भी कोई इसकी तरतीब नहीं होती। हाँ पहले से आप अगर बाहर हैं तो वो तो भाई आपका निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है, उसी तरह पाकिस्तान के अंदर जी बड़ी वो बिजली की कमी है और फलानी की कमी है तो चलो जी भाग करके जो है वो अमरीका और यूरोप मूव हो गए, ठीक है। तो ये इससे जो है ना दुनिया के अंदर अमीर लोग जो है वो समझते हैं कि जी हम बच जाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं ना उसका मतलब ये है कि जी ऐसे ही लोग दुनिया के मसाइब से अपने बचाव का कुछ सामान कर लिया करते हैं, मगर अल्लाह ताला का अजाब जब आता है तो सबसे पहले यही लोग बेबस होकर रह जाते हैं, ठीक है ना। यानी इनकी बेबसी जो है ना फिर ये बाकायदा इसका तमाशा नजर आता है, क्योंकि ये लोग पहले जो है वो बेबस नहीं थे, अब इनकी बेबसी जो होती है ना वो ऑन डिस्प्ले होती है। बाकी लोग जो हैं वो तो पहले ही बेबस थे, है ना, जो कमजोर थे, बदहाल थे, वो तो पहले ही जो है वो इस किस्म के काम नहीं कर सकते थे। अब उनकी जब बेबसी आएगी तो वो कौन सा नई बात होगी, वो तो पहले ही बेबस थे, तो ऑन डिस्प्ले इनकी बेबसी नहीं होगी। जबकि अमीरों की बेबसी जो है ना वो ऑन डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो यही लोग जो है बेबस होकर रह जाते हैं। इस आयत में जिस अजाब के अंदर उनके पकड़े जाने का जिक्र है, हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि इससे मुराद वो अजाब है जो गजवाए बदर में मुसलमानों की तलवार से उनके सरदारों पर पड़ा था, ठीक है। यानी इन लोगों के ऊपर जो अजाब आया था वो चीख की शक्ल में, जलजले की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में नहीं आया था, बल्कि मुसलमानों के हाथों से आया था, ठीक है। गजवाए बदर में ये पहला था, 70 के से ज्यादा जो है वो काफिरों के सरदार मारे गए थे। और उसके बाद जो मक्का मुकरमा के ऊपर सोग छाया था ना, ये सोग भी बड़ा अजीब सोग था, सारी उनकी जो बत्तियां थी ना, रोशनियां थी, वो गुम होकर के रह गई थी मक्का मुकरमा की गजवाए बदर के बाद। बाकी जो गजवात हुए थे ना वो तो उनकी समझ लें कि मरते मरते कोई जो है ना वो कुछ चीख मार देता है, मरते मरते कुछ अंगड़ाई ले लेता है, तो वो उहद और खंदक जो है वो तो इस तरह की चीजें थी। असल तो था गजवाए बदर, यौमुल फुरकान जब इसको कहा जाता है, लेकिन हक और बातिल के दरमियान बिल्कुल क्लियर हो गया था फतह और शिकस्त, ठीक है। तो मुसलमानों की तलवार से उनके सरदारों पर पड़ा था। और बाज़ हज़रात ने इस अजाब से मुराद कहत का अजाब लिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से मक्का वालों पर मुसल्लत कर दिया गया था, यहाँ तक के वो मुर्दार जानवर और कुत्ते और हड्डियां खाने पर मजबूर हो गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार के लिए बद्दुआ बहुत कम की है, ठीक है ना, रहमतुल आलमीन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बहुत लेकिन करी है, ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं करी है, करी है। जब शिद्दत जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, तो बहुत कम की है, लेकिन इस मौके पर मुसलमानों पर उनके मजालिम की शिद्दत से मजबूर होकर ये बद्दुआ की थी, अल्लाहुम्मा उश्दुद वफाअका अला मुदरा, कि ऐ अल्लाह ये जो मुदर है ना, मुदर क्या मतलब, कुरैश के ऊपर दादा परदादा परदादा एक का नाम था मुदर, ठीक है। तो कुरैश का लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करने के बजाय जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदर का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी मुदर ये जो लोग हैं ना, ठीक है ना, अहले मुदर या मुदर के औलादें, ठीक है, तो इनको जो है ना वो आप शदीद पकड़ लीजिए, शदीद पकड़ अपनी इनके ऊपर ले आइए, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा उश्दुद वफाअका या वफाअका अला मुदरा वजअलहा अलैहिम सिनीना कसिनी यूसुफा, अल्लाह करे मैं सही इबारत पढ़ रहा हूँ, किसी को ज्यादा सही गलती का पता चले तो बता दें, ठीक है। तो जैसे कि वजअलहा अलैहिम और इनके ऊपर ले आइए कहत, ठीक है, जैसे कि यूसुफ के कौम के ऊपर कहत आया था, यूसुफ की कौम बनी इसराइल पर कहत नहीं आया था, बल्कि मिस्र जहां पर के यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उस वक्त यानी फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके थे, बना दिए गए थे, तो उस वक्त मिस्र के ऊपर जैसे कहत आया था वैसा कहत जो है ना वो इनके ऊपर भी डाल दीजिए, ठीक है। बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर यह हदीस नकल की गई है, रिवायत की गई है। अच्छा, कोई तो सवाल हो तो पूछिएगा। आगे फरमाते हैं, तो किसी इस्लामी मुल्क की तरफ हिजरत करना जहां दीन पर अमल करना आसान हो, ये कब करना चाहिए? हाँ, मुसलमान मुल्क की तरफ, इस्लामी मुआशरे की तरफ हिजरत करना, तो ये तो हिजरत कहलाती है अपने दीन की हिफाजत के लिए, ठीक है। तो ये हिजरत का जो है ना ये तरीका वही है जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में था। नबी अलैहिस्सलाम जो है वो उस जमाने में शेख थे, ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम जमाने में अमीर थे, तो अमीर की तरफ से जब हुक्म आया, शेख की तरफ से जब हुक्म आया, उस वक्त हिजरत शुरू कर दी मुसलमानों ने, ठीक है ना। उसी तरीके से आज भी शेख की तरफ से हुक्म आएगा, अब आप हिजरत कर लें तो आप हिजरत कर लें, ठीक है ना, सीधी सी बात है। और कुछ भाई, अब शेख का काम है तो वो जो है वो इस्तखारा करे, वो दूसरे अकाबरीन से मशवरा करे, है ना, वो जो है वो हालात हाजिरा से अपने आप को बाखबर रख करे, वो आपके हालात से बाखबर रख रहे कि जी आप जो है वो शुरू में हिजरत करने वाले होने चाहिए या आप दरमियान में हिजरत करने वाले होने चाहिए या आप आखिरी रात में हिजरत करने वाले होने चाहिए, है ना भाई। मक्का मुकरमा में क्या हुआ था, सबने तो एक साथ हिजरत नहीं करी थी, किसी ने बिल्कुल शुरू में, किसी ने दरमियान में, किसी ने एकदम नबी अलैहि सल्लम के साथ हिजरत करी, और एक ने जो है वो, एक तो खैर और भी चंद लोग थे जो कि नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत करने के बाद उन्होंने हिजरत करी, जैसे अली रज़ियल्लाहु ताला, और नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो घर की ख्वातीन, उनको बाद में लेकर के आए, है ना भाई। तो हिजरत का तो ये तफसील है। जैसे कल बात हुई थी ना आखिर में कि जी कैसे पता चले कि हमारे ऊपर जो है वो अजाब आ रहा है या हमारे ऊपर जो है वो हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए आजमाइशें आ रही हैं, कैसे पता चले। भाई अल्लाह ताला ने शेख का सिस्टम बनाया है तो उसी से पता चलेगा, किताबों से अगर पता चल सकता होता ना तो सहाबा में भी ऐसे थे जो किताबें पढ़ सकते और दूसरों को पढ़ के बता सकते थे, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि भी कोई भी नहीं पढ़ सकता था किताबें, है ना, जो पढ़ सकते थे वो दूसरों को भी तो बता सकते थे ना, ये किताब में लिखा हुआ है अब आप ऐसे कर लें, अब आप ऐसे कर लें, ठीक है ना। तो भाई अल्लाह ताला ने किताबों वाला सिस्टम जो है ना उस वक्त बनाया, और आज भी जो है किताबों का एक अलग पर्पज है, उसको उस पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है ना। ये कोई थोड़ी कि जी अपने जिंदगी के मामला, कब मैंने हिजरत करनी है, किताब को खोल के देख रहे हैं वो, पता नहीं वो फतवा की वेबसाइट के ऊपर जाकर के जो है फतवा तलाश करें कब हिजरत करनी चाहिए, ठीक है। मुस्तकबरीना मुस्तकबरीना बिही सामिरन तहजुरून तहजुरून, ठीक है, यानी तकबर करते हुए रात को कहानियां सुनाते हुए, ठीक है। इसमें लफ्ज बिही की जमीर मुस्तकबरीना बिही यानी इस पर तकबर करते हुए करने वाले, मुस्तकबरीन तकबर करने वाले, ठीक है। तो हजरत ने एक बड़ा, यानी मुफस्सरीन ने और जाहिर हजरत ने भी मुफस्सरीन से चीजों को नकल भी किया है और अपनी के मुताबिक भी बात लिखी है कि यहाँ पर जो बिही का लफ्ज है, पा तो हो गया एक हर्फ इत्तिसाल के लिए और मतलब क्या इंसाफ के लिए, है ना, तो बा जो है ये तो जोड़ने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो हा की जमीर है, ये जो प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन जो है इसका नाउन किधर है, ये किस नाउन का प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे बैतुल्लाही अल्लाह का घर, तो अब इसके बाद जो है वो बैती बैतुहू, अगर उसके बाद जुमले में बैतुहू का लफ्ज आएगा तो भाई बंदा समझ जाएगा कि अल्लाह का घर पहले बोल दिया ना, बैतुल्लाही अल्लाह का घर, तो अब बैतुहू, तो हू की जमीर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी अल्लाह के लफ्ज की तरफ पॉइंट कर रही है ना। तो अब आगे भी उसके घर की बात हो रही है ना भाई। तो जमीन प्रोनाउन जब आता है किसी जुमले के अंदर तो पीछे कोई नाउन भी तो आता है ना, ताकि पता चल जाए ये प्रोनाउन किस नाउन का प्रोनाउन है, ठीक है। उसी तरह अरबी जुबान के अंदर भी होता है, उसी तरह उर्दू जुबान के अंदर भी होता है, हर जुबान में यही वाला एक तरीका होता है। तो यहाँ पे बोला, यहाँ पे इन्होंने लिखा कि बिही की जो जमीर है तो ये किस तरफ पॉइंट कर रही है, मुस्तकबरीना बिही है कि वो इस पर तकब्बुर करते हुए, ठीक है। तो उसके ऊपर अजीब नुक्ता लिखा कि इसमें लफ्ज बिही की जमीर अक्सर मुफस्सरीन ने हरम की तरफ राजे करार दी है, यानी ये जो पॉइंट कर रही है ना, रुजू कर रही है ना, वो हरम की तरफ रुजू कर रही है, हरम काबा, ठीक है। जो अगरचे ऊपर कहीं मजकूर नहीं, कभी लैंग्वेज में ऐसा भी होता है कि नाउन जिक्र किए बगैर भी प्रोनाउन का जिक्र कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो नाउन जो है ना, फिर वो पढ़ने वाले की समझ के ऊपर छोड़ दिया जाता है, या उसका यानी वो जो उसकी समझ होती है उसके हिसाब से अब वो खुद समझ जाए कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, ठीक है ना। अब नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बताया नहीं, ठीक है, कि किस चीज के ऊपर तकब्बुर करते हैं। तो अब जो है वो उलमा के लिए एक ओपन एरिया हो गया, एक ओपन ग्राउंड हो गया कि उलमा जो है वो अपना इज्तिहाद करें कि यहाँ पर जो बिही के अंदर प्रोनाउन है इसका नाउन क्या है। तो अक्सर मुफस्सरीन ने हरम की तरफ राजे करार दी है, जो अगरचे ऊपर कहीं मजकूर नहीं, ठीक है ना, मगर हरम से कुरैश मक्का का गहरा ताल्लुक और उस पर उनका नाज इतना मारूफ व मशहूर था के जिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, कि वो उनका जो सबसे बड़ा तकब्बुर था ना वो ये था कि हम तो अल्लाह के घर के मुतवल्ली हैं, है है ना, ईलाफ कुरैश, ईलाफहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ, राइट। ये कुरैश का तो यानी अल्लाह ताला का खसूसी इनाम हुआ था अपने नबी अलैहिस्सलाम को कुरैश में भेजने से पहले। पहले तो वो अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, है ना, वो हाथियों वालों ने हमला किया और अल्लाह ताला ने अबाबील को भेज करके जो है वो इनको फतह अता फरमाई, ठीक है ना। और इस वाकये के बाद से जो है ना कुरैश की धाक बैठ गई थी पूरे अरब में, बल्कि अजम में भी, जहां जहां ये खबर पहुंची कि ऐसा मामला हुआ है भाई कि इतना बड़ा लश्कर आ रहा था बड़े बड़े हाथियों के साथ, और उस लश्कर को जो है ना वो गैबी इमदाद के जरिए से तबाह कर दिया गया, ठीक है। तो अब कुरैश जो है वो तो फूले ना समाए, है ना, क्योंकि ऐसा क्लियर जो है वो इंडिकेशन थी इनकी कबूलियत की, मकबूलियत की, ठीक है ना। तो अब जाहिर है जब ऐसी बड़ी नेमत मिले, ऐसी बड़ी मदद मिले, और साथ साथ जो है वो तज़किया नफ्स का कोई इंतजाम ना हो, है नफ्स के अंदर जो तकब्बुर पैदा होता है इन मामलात के नतीजे में, तो आपने उसकी सफाई का ना तस्फिया कल्ब का कोई इंतजाम है ना तज़किया नफ्स का कोई इंतजाम है, तो फिर तो ऐसा नफ्स जो होता है वो फूल के क्या हो जाता है, कप्पा, है ना, उर्दू में कहते हैं ना फूल के कप्पा हो गया। तो इनका नफ्स भी इसी तरीके से फूल फूलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ना इनका नाज और नखरा जो है ना वो बढ़ गया बहुत ज्यादा, जैसे हमारे भी होते हैं ना कभी अम्मी अब्बू ने बहुत नाज और नखरे में पाला होता है ना, तो अब हम बड़े भी हो जाते हैं ना, शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो हमें आदि आदत हो जाती है नाज और नखरे की, ठीक है ना। अब वो नाज और नखरे जो है ना फिर वो हर जगह चल रहे होते हैं, हत्ता कि कहीं कॉलेज जाएंगे तो वहां पर भी नाज और नखरे, यूनिवर्सिटी चले गए वहां भी नाज और नखरे, कहीं जो है वो एम्प्लॉयमेंट जॉब के ऊपर चले गए वहां पे जो है वो बॉस के साथ नाज और नखरे, क्योंकि अम्मा अब्बा ने बिगाड़ दी थी, तबीयत बिगाड़ दी थी। हत्ता के दीन में भी आ जाते हैं ना, तो दीन में भी आकर के वही नाज और नखरे चल रहे होते हैं, जैसे कि अपने माँ बाप के घर के अंदर चल रहे थे। ऐसे ही फिर लोग जो है वो खुशकिस्मत होते हैं तो अच्छा ससुराल मिल जाता है, और अगर जो है वो अल्लाह की तरफ से कुछ सख्ती आ गई तो ससुराल में फिर जो है ना वहां पे नाज और नखरे, तो आपको पता है फिर क्या होता है, सारी खवातीन जो है वो जानती हैं इस बात को, ठीक है। तो ये नाज और नखरे जो होते हैं ना ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, ठीक है ना। तो इससे भी जो है बचना चाहिए और बचाने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो ये ना समझे कि जी सारी दुनिया जो है ना वो उनके आगे पीछे फिरेगी, जैसे कि दूसरे लोग उनके आगे पीछे चंद लोग फिर गए थे, ठीक है। तो इनके ये नाज और नखरे जो है ना वो आसमान को बातें कर रहे थे इस तरह से गोया थे, तो सभी को पता था कि ये है, तो इस वजह से जिक्र करने की जरूरत नहीं थी। नहीं, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो है ना, जैसे कि पीछे भी बात हो चुकी है, बड़े सिलेक्टेड अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और बड़े सिलेक्टिव जो है वो तरतीब में इस्तेमाल किए हैं, और जिसकी अल्लाह ताला की हिकमत के मुताबिक जिस लफ्ज की जरूरत नहीं थी वो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, कुरान मजीद के अंदर डाला ही नहीं वो लफ्ज। जब भी तो कुरान मजीद के अंदर इजमाल है, खूबसूरती है ना, क्या जबरदस्त नज़म है कुरान मजीद का, है ना, जो जरूरत है सिर्फ वही है, जो जरूरत नहीं है वो है ही नहीं उसके अंदर। अब ये जरूरत हमें समझ में नहीं आती क्योंकि हमारी अकल इतनी छोटी सी है, हमारा इल्म ही इतना कम है, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता है ना किस चीज़ की जरूरत थी मेरे कुरान के अंदर और किस लफ्ज़ की मेरे कुरान में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह की हिकमत के मुताबिक ऐसे ही लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं थी हरम का तस्करा करने, ठीक है। मानी इसके ये हैं कि कुरैश मक्का का अल्लाह की आयतें सुनकर पिछले पांव भागने, यानी रिट्रीट जो करते थे ना पीछे उल्टे पांव भाग जाते थे, और ना मानने का सबब हरम मक्का की निस्बत और उसकी खिदमत पर उनका तकब्बुर और नाज था, ठीक है। जैसे आजकल कुछ लोगों को सलाहुद्दीन अयूबी बनने के ऊपर बहुत ज्यादा नाज हुआ है, राइट, 21वीं सदी के सलाहुद्दीन अयूबी, भाई सलाउद्दीन अयूबी कोई जो है वो क्रिकेट यानी कोई जो है वो क्या था, क्रिकेट का कोई स्टार था, सलाउद्दीन अयूबी जो है वो कोई क्या कहते हैं यानी कोई दुनियादार किस्म की चीज थी, वो जो है कोई वो क्या कहते हैं फुटबॉल का चैंपियन था, वो कोई पॉप स्टार था, सलाउद्दीन अयूबी कौन थे, वो दीन के चैंपियन थे ना, ठीक है। उस जमाने में भी जो गलत फहमियां फैली हुई थी ना वो सेक्युलर और एथियस्टिक गलत फहमियां नहीं थी, वो प्योरली रिलीजियस गलत फहमियां थी, रिलीजियस, ठीक है ना, दीन की शक्ल को गलत बना दिया, दीन के अंदर गलत फहमियां, ठीक है ना। ये हरम काबा की जो मतवली होना है, ये कोई शराब खाना चलाते थे ये लोग, राइट, कोई खेल कूद, कोई नाच गाने की महफिलें, ये हरम, हरम का काम करना, हम हरम की जो नस्बत है ये तो खालिसतन दीनी नस्बत है ना, राइट। क्या मतलब, ये लोग ये दीनदार लोग थे, दीनदार लोग थे, ठीक है ना, लेकिन गुमराह क्यों थे, क्योंकि दीन का हुलिया बिगाड़ करके उसके ऊपर अमल करते थे। हमारा भी इस वक्त यही हाल है, सारे के सारे दीनदार हैं, ठीक है ना, लेकिन हुलिया बिगाड़ करके उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, और जो मना करने वाले उलमाए कराम सही दीन बताने वाले हैं उनसे जो है वो नफरत, ठीक है ना, किसी से जो है वो डायरेक्टली नफरत और किसी से जो है वो थ्रू एसोसिएशन नफरत, कि ये उन जिनसे हमें नफरत है, जिनको हम कहते हैं कि जी ये तो मौलाना कहलाने के काबिल नहीं है, जो कि आलिम कहलाने के काबिल नहीं है, है ना, तो उनको तो हमने अब कह करके जी वो आलम कहलाने के काबिल नहीं है, उनको जो है ना वो हमने आलम की सबसे ही निकाल दिया अपने अपने जोम में, ठीक है ना। अच्छा, अब बात यहाँ पे रुक जाएगी कि एक को हमने अलग अलग कर दिया कि ये तो काबिल ही नहीं है ना ये शख्स नाउजुबिल्लाह आलम कहलाने के, इसको तो हमने इस वजह से हम इससे नफरत करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब उस आलम दीन से बहुत सारे दूसरे आलम दीन मोहब्बत करते हैं, उनका माथा चूमते हैं, है ना, उनकी जो है वो तारीफों के पुल बांधते हैं माशाल्लाह, ठीक है ना। तो अब क्या ख्याल है, जो उससे नफरत करता है तो अब क्या वो बाकियों से दिल में उसकी मोहब्बत रहेगी, उसका ख्याल है कि मैं मोहब्बत कर लूंगा दूसरों से भी, मैं दूसरों से मोहब्बत कर लूंगा, बस इस एक से नफरत करूंगा, दूसरों से मैं मोहब्बत करूंगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिससे इसको नफरत है जब दूसरे उससे मोहब्बत कर रहे हैं तो इसके दिल में में मोहब्बत जो है ना वो कायम रह नहीं सकती, इसका दिल इसके हाथ में कोई थोड़ी है ना, अल्लाह ताला ने शैतान को इसके दिल के ऊपर छोड़ना है, ठीक है ना, और शैतान आकर के इसके दिल में बाकी दूसरों की भी नफरत पैदा करके छोड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जब उलमा से नफरत पैदा हो जाएगी तो अब दीन को सही सही शक्ल में रखने के लिए अब क्या चीज बाकी रह गई, भाई कौन बताएगा इसको कि क्या सही अमल होता है, क्या गलत अमल होता है, क्या सही अकीदा होता है, क्या गलत अकीदा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दीन का हुलिया बिगड़ जाता है, उस जमाने में भी यही हुआ था, है ना, कोई नई बात नहीं है, 1400 साल पहले भी यही हुआ था, उससे पहले भी बनी इसराइल में भी ये हरकतें चल रही थी, ठीक है। तो इनका जो ना मानने का सबब था वो इनकी दीनदारी थी, ठीक है ना, लेकिन बिदतों वाली दीनदारी थी, ठीक है। अच्छा, आगे सामिरन, तो देखना रह गया समरुन का, समरुन या समरुन, समरुन से मुश्तक है या समरुन से, इसकी तहकीक नहीं देख सका, तो ये इसका जो जेरेंड रूट वर्ड है वो ये बनता है समरुन या समरुन, जिसके असल मानी चांदनी रात के हैं। अरब की आदत थी कि चांदनी रात में बैठकर किस्से कहानियां किया करते थे, इसलिए लफ्ज समर जो है किस्सा कहानी के मानी में इस्तेमाल होने लगा। और सामिर किस्सा गो को कहा जाता है, ठीक है। उस जमाने में आर्टिफिशियल लाइटिंग तो थी नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो चिराग जला लिया करते थे, ठीक है ना, ना स्ट्रीट लाइट्स थी, ना जो है वो फ्लड लाइट्स थी, आजकल तो मैच जो है वो फ्लड लाइट्स में होते हैं, उस मुल्क के अंदर जिस मुल्क में 12 12 घंटे की बिजली चली जाती है ना, उसी शहर के अंदर जो है वो एक नहीं एक से ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम है जिनके अंदर ओहो दिन का समा फ्लड लाइट्स से वो बुकाए नूर माशाल्लाह, ऐसे स्टेडियम होते हैं सड़क पे जा रहे हो ना कई कोसों दूर से भी तो वो बुकाए नूर होते हैं, और घरों में जाके देखो तो जी माशाल्लाह 12 घंटे का लोड शेडिंग हुई भी है, हम अभी होकर के आए ना 12 पूरे 12 घंटे की बिजली गई थी दो मरतबा कम से कम, बहुत आजकल तो फिर थोड़े से बिजली कम जानी शुरू हो गई है, पहले तो हर दो दो घंटे पे जाती थी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल लाइटनिंग उस जमाने में नहीं होती थी, तो वो चिराग जला करके ऐसे जो है ना वो या तो चिराग जला के काम करते थे या फिर वो चांदनी रात में काम करते थे। یہ لفظ اگرچہ مفرد ہے مگر معنی میں جمع کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اچھا سوری رات میں ہاں اس جگہ سامر بمانی سامرین جمع کے لیے استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, بہی سامرن. ٹھیک ہے, یعنی وہ رات کو قصے کہانیاں سنانے والے, یہاں پر یہ مراد ہے. تو سامر بمانی سامرین, ٹھیک ہے, یعنی مفرد بمانے جمع, سنگولر بمانے پلورل استعمال ہوا ہے. مشرکین کا ایک حال جو آیات الہیہ سے انکار کا سبب بنا ہوا تھا, حرم مکہ کی نسبت و خدمت پر ان کا ناز تھا. دوسرا حال یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ بے اصل اور بے بنیاد قصے کہانیوں میں مشغول رہنے کے عادی ہیں, ان کو اللہ کی آیات سے دلچسپی نہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھنے کے عادی ہیں, ہے نا, اور جو ہے وہ کوکنگ ویڈیوز دیکھیں, یا جو ہے وہ کوئی اور ویڈیو دیکھیں, ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیو دیکھیں, یا جو ہے وہ الٹی سیدھی لطیفے پڑھتے رہے, ہے نا, واٹس ایپ کے اوپر لطیفے آئے چلے جا رہے ہیں, واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ کیا الٹی سیدھی اخبار, وہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, جی فلاں نے کیا کہہ دیا, اور فلاں نے فلاں کون سا موشن پاس کر دیا, اور کون سی کیا چیز ہو گئی, ہے نا, یہ اس کے عادی ہو چکے ہیں. ان کے پاس کہاں سے ٹائم ملے گا کہ جی کوئی تفسیر کی کلاس سن لیں, اللہ کی آیات کے اوپر غور کر لیں, ہے نا. کتنے ایسے لوگ ہیں ہم جانتے ہیں کہ گھر آتے ہیں تھکے ہارے, اور تھکن کہاں نکلتی ہے, ٹی وی کے سامنے, ہے نا, اخبار, وہ اخبار تو پرانے زمانے کی بات ہو گئی, ٹی وی کے سامنے جس کے اندر کے وہ تبصرے آ رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں یہ ہو گیا, انڈیا میں یہ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اسی وقت جو ہے وہ ایک گھنٹے کی تفسیر کی کلاس آ رہی ہوتی ہے, اور ان تک جو ہے وہ پیغام بھی آ رہا ہوتا ہے, اور ان کو جو ہے وہ بلانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں اور سمجھانے والے بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن نہیں میں نے نہیں سننا بھائی, میں نہیں یار, میں تو پہلی ٹینشن سے آیا ہوں, نعوذ باللہ, اور ٹینشن ہو جائے گی سن کر کے, ہے نا, کیونکہ یہ جو مولانا صاحب ہے نا, یہ چکنی چپڑی باتیں تو کرتے نہیں ہیں, فضائل سنا سنا کے مجھے جو ہے نا وہ جنت کے درجات تو عطا کرتے نہیں ہیں, یہ تو ہے نا وہ کچھ اور ہی بتانا شروع کر دیتے ہیں, وہ میں سننا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے نا, میں سننی نہیں چاہتی. تو اس وجہ سے بے بنیاد قصے کہانیوں میں مشغول رہنے کے عادی ہیں, ان کو اللہ کی آیات سے دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں سے اکثرهم للحق کارہون. ٹھیک ہے نا, الحق سے جو ہے نا ان کو کراہیت ہوتی ہے, حق کی بات سے. تحجرون, یہ لفظ حجر بضم الہا, یعنی ہا کے اوپر غمہ, غمہ مطلب پیش, تو ضم الہا سے مشتق ہے, یعنی سوری حجر سے مشتق ہے, یعنی حضرت یہاں پہ لکھ دیا اوپر سمر اور سمر جو ہے وہ فتح سین لکھتے تو پھر اس فقیر کا بھی فائدہ ہو جاتا. بہرحال خیر, تو یہ لفظ حجر بضم الہا سے مشتق ہے, جس کے معنی فضول بکواس اور گالی گلوچ کے ہیں. یہ تیسرا حال ان مشرکین کا بیان کیا گیا کہ یہ لوگ فضول بکواس اور گاری گروچ کے عادی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بعض ایسے ہی گستاخانہ کلمات کہتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کراہیت ہے نا حق بات سے, تو اس وجہ سے جب غصہ آتا ہے پھر تو اس کے بعد پھر گستاخانہ کلمات منہ سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, عشاء کے بعد قصہ گوئی کی ممانعت اور خاص ہدایات. یہ باب حضرت نے باندھا, تو فرماتے ہیں کہ رات کو افسانہ گوئی کا مشغلہ عرب و عجم میں قدیم سے چلا آتا ہے, اور اس میں بہت سے مفاسد اور وقت کی اضاعت تھی. ٹھیک ہے نا, اضاعت المال, مال کا ضائع کرنا, اسی طریقے سے وقت کا ضائع کرنا. ٹھیک ہے, اس سے بڑا نقصان کوئی انسان اپنا نہیں کر سکتا اپنے وقت کو ضائع کرنے سے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بھی اس نے نیک عمل کرنے, وہ وقت کو استعمال کر کے کرنا ہے نا. مال کو ضائع کر بھی دیا تو وہ زکوٰۃ سے محروم ہو جائے گا, صدقہ خیرات سے محروم ہو جائے گا, لیکن غریب انسان نماز تو پڑھ سکتا ہے نا, غریب انسان ذکر کر سکتا ہے, غریب انسان دعائیں مانگ سکتا ہے, تو مال کو ضائع کرنے کے بعد بھی نیکی کا کام کر سکتا ہے نا. لیکن جس نے وقت کو ضائع کر دیا, تو اب وہ نیکی کا کام کب کرے گا, کیسے کرے گا, وقت چاہیے ہوتا ہے نا, وقت کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, آپ دعا بھی نہیں کر سکتے, ذکر بھی نہیں کر سکتے, صدقہ خیرات تو دور کی بات, اس کے لیے تو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے, باہر جانا پڑے گا, بندے تلاش کرنے پڑیں گے, ان کو صدقہ دینا پڑے گا, رائٹ. تو وقت سے زیادہ قیمتی وسیلہ اعمال کے لیے وہ کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. آپ کسی نیک انسان کے پاس جا کے اس سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات شیطان کو اچھی طریقے سے پتا ہے, اس وجہ سے شیطان جو ہے نا وہ ہم سے ہمارا وقت چھیننے کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرتا ہے, ان کے پاس وقت نہ رہے, ٹھیک ہے نا. جب وقت نہ رہا, اب یہ نیک صحبت جیسی چیز سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان کے پاس موجود بھی ہوگی نا, ان کے گھر میں بھی نیک صحبت کا کوئی ذریعہ موجود ہوگا, اگر وقت نہیں ہے یہ اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان سے ان کا وقت لے لو, صحت لے لو, پھر بھی دعائیں کر سکے گا, پھر بھی اللہ کو راضی کر سکے گا صبر شکر کے ساتھ. مال لے لو, پھر بھی اللہ کو راضی کر سکے گا, بہت کچھ کر سکتا ہے بغیر مال کے بھی, وقت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, رائٹ. تو اب وقت کی ہمیں کتنی حفاظت کرنی چاہیے نا, کتنا وقت کے اوپر ہمیں, اور اگر ضائع ہو رہا ہے تو ہمیں کتنا نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے اس کے اوپر نا, کتنا افسوس کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ میرا وقت ضائع ہو گیا. کیا ہمارے پاس یہ احساس زیاں ہے؟ احساس زیاں تو کم از کم پیدا ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر مانگیں گے کہ اللہ ہمارے وقت کی حفاظت فرما دیجئے, تو اللہ تعالیٰ پھر حفاظت بھی فرما دیں گے. ایک عجیب بات کہ کسی نے یہاں لکھا ہے کہ ایک عجیب بات کہ ان لوگوں کو قصہ گوئی کا شوق تھا اور خوب وقت لگاتے تھے, مگر جب انبیاء علیہ السلام دین بیان کرتے تھے تو اساطیر الاولین کا طعنہ دیا کرتے تھے. یہی کچھ حال آج کل کے لوگوں کا بھی ہے کہ جب ان کے مطلب کی بات کی جائے, ٹاک شو والی باتیں, کھیل کود والی باتیں, ڈرامے فلموں کی باتیں, تو خوب گپ شپ کرتے ہیں, لیکن جب خالص دین کی بات کری جائے تو منہ پھیرتے ہیں. ہاں, جیسے مجالس کے اندر آپ بیٹھے ہیں, جو اس طرح کی مجالس ہوتی ہیں دنیا دار, وہاں پہ آپ کرکٹ کا تذکرہ چھیڑ دیں, بڑا ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے گا. آپ پالیٹکس کا تذکرہ چھیڑ دیں, ہر بندہ پارٹیسپیٹ کرے گا. آج کل تو خیر وہ مرنے مارنے پہ اتر آئیں گے, لیکن کچھ دن پہلے تک جو ہے وہ بڑا خوشی خوشی پارٹیسپیٹ کرتے تھے. لیکن وہیں پر جو ہے نا, آپ چنے جی کچھ حدیث پڑھ لیتے ہیں, چنے جی کوئی جو ہے وہ آخرت کی بات کر لیتے ہیں, کچھ جو ہے وہ موت کی تیاری کے بارے میں فکر کر لیتے ہیں, اور ادھر ہی جو ہے نا کسی کو فون آ جائے گا, کسی کو کچھ اور یاد آ جائے گا, اور کسی کو جو ہے نا وہ ایسے ادھر ادھر جو ہے وہ بغنے جھانکنا جس کو کہتے ہیں وہ سب شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ دل ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی ایک ایک یعنی ایک ایک بے چینی پیدا, ایک ایک یعنی انیزینس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے دین کے بات کے وقت میں, ٹھیک ہے نا. تو دل کا پھر کنٹرول ہوتا ہے انسان کے اوپر. اب دل کے اندر یہ والی کیفیت ہوگی تو پھر وہ نہیں بیٹھ سکے گا ایسی جگہ کے اوپر نا, وہ ایسی بات نہیں سن سکتا پھر, ٹھیک ہے. بہرحال یہ جو ہم نے بات کری ہے, یہ اپنی اصلاح کی نیت سے کریں گے تو ہمیں بھی فائدہ ہوگا, اور اگر صرف جو ہے وہ دوسرے برے ہیں اور ہم بڑے اچھے ہیں, اگر یہ دل کے اندر ہوگا تو پھر الٹا یہ بات جو ہے وہ ہمارے ہی نقصان میں ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو مٹانے کے لیے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی کو منع فرمایا, فضول قصہ گوئی کو, کیونکہ عشاء کے بعد جو ہے وہ دین کی بات اور خیر کی بات جو ہے نا وہ عشاء کی بات بھی ہو سکتی ہے. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, عشاء کے بعد کبھی جو ہے وہ دینی مجلس بھی ہوتی تھی, اور کبھی اور اکثر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کے گھر کے اندر جو ہے وہ لمبی لمبی باتیں کیا کرتے تھے, کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کیا باتیں, لیکن ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ سلمان فارسی سے جو ہے وہ یعنی کہ وہ شروع ہو جاتا تھا کہ یار یہ یعنی سر تو ہم اپنے اردو زبان میں بات کرتے ہیں, وہ تو ایسے نہیں کہتی تھی, لیکن یہ نبی علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی میں باتیں کر رہے ہیں, ہے نا. بیویاں ظاہر ہے بیویاں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تنہائی چاہیے اپنے محبوب کی, ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرنی ہیں, لیکن یہاں پر دین کے جو فکر ہوتی تھی, اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو تھے نا, یہ نبی علیہ السلام سے عمر میں آپ کو پتہ ہے نا, کوئی پتا نہیں 200-250 سال تو سینئر تھے, کتنا انہوں نے دنیا دیکھی تھی اور کتنی ان کی جو ہے وہ یعنی ان کی ڈیپتھ ہوگی چیزوں کے اندر, رائٹ. عمر کے ساتھ جو آتی ہے, تجربے اور مشاہدے کے ساتھ جو چیزیں آتی ہیں, تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر اپنے دل کا حال کھولتے ہو. واہ مجوسیں لگتی تھی نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے یہاں پر کوالیفائر لگایا کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی کو منع فرما. حکمت یہ تھی کہ عشاء کی نماز پر انسان کے اعمال یومیہ ختم ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, دنیا دن کے اعمال ختم ہو رہے ہیں جو دن بھر کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو سکتا ہے. یعنی عشاء کی نماز پڑھی, دن کے جو گناہ صغیرہ تھے اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. یہی اس کا آخری عمل اس دن کا ہو تو بہتر ہے. اگر بعد عشاء فضول قصہ گوئی میں لگ گیا تو اولاً یہ خود فعل عبث اور مکروہ ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی فضول قصہ گوئی یہ گناہ کبیرہ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے نا, یہ گناہ صغیرہ میں آتا ہے جس ایز لانگ ایز اس کے اندر بے حیائی اور بے شرمی یعنی اس قسم کی چیزیں نہ ہو تو پھر یہ فضول قصہ گوئی ہے. ہاں بھائی وہ الف لیلہ کی کہانی سن رہے ہیں یا کسی اور اس طرح کی, ٹھیک ہے نا, تو یہ جو اس قسم کے عمل اگر کسی سے ہو گئے نا تو یہ عبث اور مکروہ تو ہے, لیکن عشاء کی نماز پڑھے گا یہ گناہ صغیرہ جو ہے نا وہ اس کے معاف ہو سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اگر بعد عشاء فضول قصہ گوئی میں لگ گیا تو اولاً یہ خود فعل عبث اور مکروہ ہے, اس کے علاوہ اس کے ضمن میں غیبت, جھوٹ اور دوسرے طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے, اور ایک برا انجام اس کا یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگے گا تو صبح کو سویرے نہیں اٹھ سکے گا. اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو عشاء کے بعد فضول قصوں میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے تھے اور بعض کو سزا بھی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جلد سو جاؤ, شاید آخر رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تہجد کی توفیق کے لیے یعنی تہجد کے اوپر دسترس کے لیے جلدی سونا جو ہے یہ ایک بہت اہم چیز ہے نا. ایک تو دن کے اعمال کو بھی سدھارنا, دن میں جو ہے وہ انسان گناہ کبیرہ نہ کر رہا ہو, ٹھیک ہے, تو اس سے بھی رات کے اعمال اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے, یعنی یہ یہ یہ, یہ ایک جہت ہے, ایک اینگل ہے تہجد حاصل کرنے کا. ایک اینگل جو ہے الارم کلاک لگانا بھی ہے کہ بھئی تہجد کے اوپر کے وقت الارم کلاک لگا دی اٹھ جائیں گے, یعنی اپنی طرف سے اسباب, الارم کلاک بھی اور اسباب میں سے. اسی طرح جلدی سونا, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ایک بڑی اہم ڈسکشن ہے جو کہ تھوڑی بہت اس سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ بھائی اس وقت جو ہے نا دنیا کے اندر جو پورا کا پورا نظام آیا ہوا ہے وہ نظام یعنی بظاہر تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, بڑا ہمیں بڑا یعنی وی آر سو یوزڈ ٹو اٹ ایکچولی, ہے نا. وہ کیا ہے, آرٹیفیشل لائٹنگ کا نظام, لائٹس, گرہم کیا نام تھا اس کا جس نے کہ بلب ایجاد کیا تھا, گرہم بیل نے تو ٹیلی فون ایجاد کیا تھا, کیا تھا اس کا نام, بلب کس نے ایجاد کیا تھا, ایڈیسن, ہاں تھامس ایڈیسن, ٹھیک ہے نا. تو ایڈیسن صاحب جو ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ بلب ایجاد کیا اور ساری دنیا خوش, مسلمان ایز مچ ایز کافر, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بلب ایجاد ہوا ہے اس سے بہت سارے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ بھی حقیقت تو ہے نا. اب اگر ہم تھوڑا سا انبائس طریقے سے اس کو دیکھیں تو یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ بھائی جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دن اور رات کا نظام تھا تو اس دن اور رات کے نظام کو تو اس نے پھر آلٹر کر دیا ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب رات ہو جاتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے, ہماری زندگیوں میں تو رات نہیں ہوتی, زیادہ سے زیادہ باہر رات ہوتی ہے, گھر کے اندر تو رات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اب جب لائٹ ہی ختم نہیں ہوئی تو اب آپ جو ہیں وہ ہزار کوشش کرتے رہیں, ہزار ڈنڈے جو ہے وہ اپنے اولاد کو مارتے رہیں, ٹھیک ہے نا, سو جاؤ جلدی سو جاؤ, میں بھی جلدی سو جاؤں, لیکن پھر بھی سوتے سوتے بھی جو ہے نا وہ 11 12 کہیں پہ 1 کہیں پہ 2 اور کہیں پہ جو ہے وہ فجر تک جو ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اب یہ ہم چاہے کتنا بھی کہیں کہ نہیں جی یہ تو ترقی کے خلاف باتیں ہیں اور یہ تو جو ہے نا وہ بڑے دقیانوس اور اولڈ فیشن قسم کے مولانا صاحب ہیں اور یہ تو ہر ترقی کے خلاف ہیں اور ہر اچھائی کے خلاف ہیں اور ہر چیز میں جو ہے نا وہ ایک ہی چیز کو لے کر کے آ جاتے ہیں, تو لاکھ آپ بولیں, ٹھیک ہے نا, لیکن تھوڑا سا اپنے اوپر سے غبار اور غصہ اتارنے کے بعد اگر سوچیں تو پھر تو وہ حقیقت ہے نا بھائی, کہ بھائی दिन में सो रहे होते हैं, रात में जाग रहे होते हैं, ठीक है। अब इंसान की बॉडी क्लॉक, अब वो सारे फिर यही जो इजाद करने वाले हैं, फिर वही जब थोड़ा सा और तहकीक करते हैं, और कभी कभी अपनी तहकीकात को जो है वो जरा सामने बयान भी कर देते हैं, सारी तहकीकातों में बताते भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ अरसे के बाद कुछ कुछ बताते भी हैं। तो अब इन्होंने जो है ना वो एक नई तहकीक करके बताई जी कि जी इंसान की जो बॉडी होती है ना, उसकी क्लॉक जो होती है वो ऐसी होती है कि वो बाकायदा रात के पहरों के साथ फिक्स होती है, ठीक है ना। अब जब अंधेरा छा जाता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फलाने हॉर्मोन्स जो है वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, और दूसरे जो है वो कम बनना शुरू हो जाते हैं जब बाहर अंधेरा होता है। भाई जब बाहर अंधेरा ही नहीं है तो फिर वो हार्मोन प्रोडक्शन का क्या होगा फिर? अच्छा, फिर उसके बाद इस टाइम से इस टाइम तक जो है ना, वो अगर इंसान सो जाए ना, तो उसकी जो नींद होती है ना वो 3 टाइम्स होती है, ठीक है ना, यानी फजर से 1 घंटा पहले तक, और इशा के फौरन बाद से लेके फजर से 1 घंटा पहले। ये जो टाइम है ना जी, है ना, ये अब ये वही काफिर साइंसदान ये बता रहे हैं कि जी इसमें अगर सो जाए ना बंदा, तो उसकी नींद पूरी हो जाती है और वो फ्रेश हो जाता है एकदम, ठीक है ना। 4 घंटे सोया, 5 घंटे सोया, फ्रेश हो गया। अब ये अगर उस वक्त नहीं सोया और इसने सोचा कि मैं ये 5 घंटे की नींद जो है ना मैं फजर के बाद पूरी कर लूंगा, मैं दिन में सो जाऊंगा, ठीक है ना। अब वो दिन में जो सोएगा ना, 5 ही घंटा सोएगा, नींद उसकी पूरी नहीं होगी, ठीक है ना, वो थका थका रहेगा, और उसके बॉडी के अंदर जो उस वक्त की ग्रोथ होनी थी रात के वक्त अगर ये सोता, तो उसकी बॉडी के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आनी थी, दिन में वो सोता रहे, कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगी, बल्कि नेगेटिव चेंजेस आने के ज्यादा इस्तेमाल है, ठीक है ना। तो अब जो है वो कर लें आप थॉमस एडिसन की तारीफें, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ये बात हो गई जो कि साइंटिफिक रिसर्च से भी और कुछ कॉमन सेंस से भी अगर हमारा गुस्सा उतरे, ठीक है ना, तो हम ठंडे दिमाग से अगर इन चीजों को देखें तो वैसे भी बात साफ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर मजीद ये कि अब एक मुस्तकबिल की भी बात है, जो कि आप जो पुराने लोग हैं उनके सामने तो कई दफा हो भी चुकी है। मुस्तकबिल के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ अहवाल बताए, है ना, कि जब दज्जाल का जमाना होगा, दज्जाल के वक्त क्या होगा कि दिन जो है वो पूरे साल के बराबर होगा, दिन पूरे साल के बराबर होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब उससे जो है वो जहन में ये पैदा होता है कि लगता है कि फजर तुलू जो है ना वो होगी सूरज, और फिर सूरज जो है ना वो शायद ऊपर आके ठहर जाएगा, सूरज की मूवमेंट स्लो हो जाएगी या अर्थ की रोटेशन स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना वो अर्थ रोटेट ही नहीं होगी, जैसे कि अभी तो रोटेट होती है ना, तो सूरज के सामने से हट जाती है, फिर हमारी हमारा जो सरफेस होती है तो वो दिन 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 खत्म हो जाता है, रात शुरू हो जाती है, इस तरीके से। तो रोटेशन के ऊपर जो है वो दिन रात होती है, ठीक है। अब अगर रोटेशन इतनी स्लो हो जाए कि वो 365 दिन में जाकर के जो है वो एक रोटेशन हो रही है सूरज के सामने से, तो फिर जो है वो इस तरीके से दिन लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिन लंबा होने का एक ये तरीका है, तो क्या ऐसा हो सकता है? राइट, अल्लाह ताला ने जो अस्बाब का निजाम बनाया है, जो कि हमारे सामने है, कि हमारी जिंदगी उसके ऊपर डिपेंड करती है, पूरे अर्थ का जो है वो यानी हयात डिपेंड करती है इस रोटेशन के ऊपर, रोटेशन की जो स्पीड है, रोटेशन के जो यानी जो आपका जो अर्थ जिस ऑर्बिट के ऊपर चल रही है, ये एक सर्टेन स्पीड के साथ है। अगर ये स्पीड थोड़ी सी ऑल्टर हो जाए, अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट के अंदर रह ही नहीं सकती, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, अर्थ अपने मदार में से निकल जाएगी, निकल जाएगी मदार में से। तो भाई ये तो मुमकिन नजर नहीं आता कि जी इंसान जिंदा भी रहे, अर्थ भी सब बिल्कुल ठीक ठीक रहे, और रोटेशन भी जो है वो स्लो डाउन हो जाए, तो फिर क्या होगा? दिन 365 दिनों के बराबर कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर दूसरी दलील, यानी एक तो साइंटिफिकली ये हो नहीं सकता, दूसरी दलील कि सहाबा कराम जिनको सबसे ज्यादा फिक्र जो है अपने दीन की थी, ठीक है ना, उनको ये फिक्र कि भाई हम खाएंगे कहाँ से और पियेंगे कहाँ से, हमारी खेतियों का क्या होगा, राइट, अगर इतना लंबा दिन हो जाएगा तो फिर जो है वो रात को हम पानी का इंतजाम क्या करते थे, तो वो पानी का इंतजाम कब करेंगे, रात ही नहीं आएगी तो कैसे होगा। नहीं, उनको थी अपनी फिक्र नमाज की, सबसे ज्यादा फिक्र उनको ईमान के बाद नमाज की थी। तो सहाबा ने सवाल पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम नमाज कैसे पढ़ेंगे अगर दिन 365 दिनों के बराबर हो जाएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम वक्त के अंदाजे से नमाज पढ़ोगे, ठीक है ना, वक्त के अंदाजे से। ये नहीं कि एक दिन 365 दिन के बराबर हो गया तो उस एक साल बराबर दिन में पांच नमाजें पढ़ोगे, नहीं, पांच नहीं पढ़ोगे, बल्कि नमाजें उसी हिसाब से पढ़ते रहोगे जैसे तुम आम हालात में पढ़ते हो, ठीक है। इससे क्या पता चला कि इन रियलिटी दिन नहीं होगा 365 दिन, दिन तो वही होगा 12 घंटे का, 10 घंटे का, कहीं पे जो है वो 22 घंटे का, कहीं पे जो है वो 4 घंटे का, वही दिन होगा। तो फिर क्या तब्दीली आ जाएगी? सिर्फ इतनी तब्दीली आएगी कि दिन रोशनी से ताबीर किया जाता है और रात अंधेरे से ताबीर की जाती है। ये रोशनी जो है ना, ये 365 दिन तक जारी रहेगी, 365 दिन तक जो है वो उजाला ही उजाला रहेगा, तारीकी आएगी ही नहीं, बस इतना सा फर्क हो जाएगा। और ये फर्क जो है ये तो आज भी हो रहा है, ठीक है ना, एक तो आर्टिफिशियल लाइटिंग के जरिए से, जो कि दुनिया के अंदर बल्बों के जरिए से तो ये उजाला जो है वो एक्सपैंड किया जा रहा है, किया जा रहा है। फिर उसके बाद दो प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम हो रहा है कि आर्टिफिशियल मून्स, रिफ्लेक्टिव मिरर्स जो के स्पेस के ऊपर सेट किए जा रहे हैं ताकि सूरज की रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करें और जमीन के उन हिस्सों के ऊपर जिन हिस्सों के ऊपर डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़ सकती है तो मिरर पर से रिफ्लेक्ट होकर के सूरज की रोशनी पड़े, ठीक है ना। तो जब सूरज की रोशनी ऐसे स्पेस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर उजाला ही उजाला, हर तरफ उजाला ही उजाला, ठीक है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जी फिर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि एक दिन जो है ना वो 365 दिन का होगा और फिर उसके बाद अगला दिन जो है वो एक महीने के बराबर होगा, गालबन क्या है, एक महीने के बराबर, फिर एक हफ्ते के बराबर, फिर उसके बाद अपने नॉर्मल पे आ जाएगा। तो भाई अगर स्पेस मिरर्स हैं तो दिन जो है वो 365 दिन का होगा, तो फिर अगला दिन एक महीने का कैसे हो जाएगा? अब अल्लाह आलम कैसे होगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो मिरर्स का जो फंक्शन है ना वो स्विच ऑफ हो जाए, ठीक है ना, एक साल तक तो ये चलता रहे, उसके बाद जो है ना कोई टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो जाए और फिर जो है ना वो फिर दोबारा से फॉल्ट को रिमूव करें तो अब जो है ना एक महीने तक फिर जो है वो रोशनी उजाला मौजूद रहे और फिर से टेक्निकल फॉल्ट शुरू हो जाए, है ना। टेक्निकल फॉल्ट तो इस तरह की चीजों के अंदर तो बहुत होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक हफ्ते तक जो है वो टेक्निकल फॉल्ट रिमूव हो जाए, फिर उजाले उजाला एक हफ्ते तक, फिर टेक्निकल फॉल्ट शुरू हो जाए और अब के बार जो है ना वो खत्म ही हो जाए और फिर वही बैक टू स्क्वायर वन, वही एक दिन का दिन शुरू हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल लाइटिंग का सिलसिला है ना, तो इसकी तो निस्बत भी फिर आखिर में जाकर के दज्जाल से जाकर के बनती है। और हमारे दौर के अंदर तो जाहिर है हमारी सेहतें खराब, हमारे आमाल खराब, हमारी जो है वो हरकतें, रात की तारीकी आती नहीं है और उसकी वजह से फिर जो है वो बंदा जानी वो कितने काम कर जाते हैं जो कि हम अदरवाइज ना कर पाते अगर अंधेरा हो जाता। बहरहाल तो ये तरक्की के खिलाफ कोई समझे या इस बात के खिलाफ समझे, लेकिन पॉइंट वॉज, एक जो अहम पॉइंट है ना वो बहुत बहुत जरूरी है, वो ये है कि हम अक्सर चीजें जो होती हैं ना, जो मॉडर्न इन्वेंशंस और मॉडर्न डिस्कवरीज और इनकी जो स्पेशली जो वेस्ट के अंदर जो डिस्कवरीज और इन्वेंशंस होती हैं ना, हम अक्सर चीजों के बारे में एक जुमला कहते हैं, ठीक है ना। वो जुमला क्या होता है कि भाई ये जो चीजें हैं ना ये तो बस एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर जो है वो आप खैर डाल दें या इस कंटेनर के अंदर आप शर डाल दें, है ना भाई। तो ये तो बस एक व्हीकल है, ये तो बस एक टूल है, टूल को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें या टूल को आप बुरे तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हम इस तरह से बोल करके ना बहुत सारी चीजों को अपने लिए बड़ा फायदेमंद बना लेते हैं, बड़ा अच्छा समझना। जैसे टेलीविजन, टेलीविजन जब आया तो सारे मुसलमान जो ऐसे थे मदारिस और मशायख के अलावा सब ने यही कहा ये तो एक टूल है जी, इस टूल के जरिए से जो है ना हम दीन की तबलीग किया करेंगे, है ना, दीन को फैलाए करेंगे टेलीविजन के जरिए से। आज भी कोशिश करे चले जा रहे हैं लोग टीवी के जरिए से दीन फैलाने की, ठीक है। तो अब वो टूल के जरिए से फिर वो टेलीविजन जो है वो बड़ा फायदा मंद नजर आना शुरू हो गया और जाहिर है फिर हुआ क्या उसके साथ, फायदा थोड़ा नुकसान बहुत ज्यादा। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ चीजें जो होती है ना वो महज टूल नहीं होती, बल्कि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी नेचर के अंदर शर होता है, वो बाय नेचर उनके अंदर शर होता है, अब उनको जो है ना वो आप खैर भर करके ना उनको खालिसतन खैर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो शर तो वो उनकी उनकी यानी क्रिएशन के अंदर शर मौजूद है, ठीक है ना, बाय बाय डीप यानी बाय नेचर। अब आप उसको ऊपर से जो है वो कितना ही उसके अंदर खैर घुसने की कोशिश करें, भाई उसका शर तो अपनी जगह पर रहेगा, बल्कि गालिब भी रहेगा, ठीक है। तो ये जो जुमला हम एक यानी जजमेंट दे देते हैं ना, स्पेशली जो दज्जाली तहजीब की तरफ से चीजें आती हैं उनके बारे में बड़ा बड़ा जल्दी ये स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि जी ये तो सिर्फ एक टूल है, इसको अच्छे लिए इस्तेमाल करें, इसको बुरे के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, हमें जरा सोच समझ करके ये बात करनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी नहीं होती हैं, कुछ चीजें होती भी होंगी भाई कि जिनको बगैर बहसियत टूल के आप इस्तेमाल करें और खैर और शर जो है वो दोनों का के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं भी होती। ठीक है, तो टाइम ज्यादा हो गया, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, वरना क्लास तब करते हैं यहाँ पे। अफलम यदब्बर कौल से कल पढ़ते हैं। चलने लगता है कुछ सवाल नहीं है तो क्लास खत्म करते हैं। वाखिर दुआना अनिल हमदुलिल्लाह। अस्सलाम।